Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka satavam mantra dekhna. सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वम् तत्र योनिम् कृणवसि नहि ते पूर्तमक्षिपात्। ये मंत्र का अर्थ समझ में आए ना? सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा परमात्मा अथवा सूर्य समझ लेना, प्रसव करने वाला को यानी प्रसवेन सविता माँ है अथवा सविता परमात्मा है। सवित्रा के द्वारा सारे संसार में अन्न उत्पन्न होता है, याद रखना। हाँ, सम्यक प्रस्ताहुति आदित्यम उपतिष्ठति। आदित्य जायते मेघ ततो वृष्टि ततो अन्नम ततो प्रजा। आदित्य में अग्नि में जो आहुतियां डाली जाती है ना, ये आहुतियां सीधा आदित्य में पहुंचता है। आदित्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं, इसीलिए आदित्य को क्या बोला? सवित्रा। सवित्रा तो सवित्रा देवता जो है ना, सविता देवता, सूर्य देवता, अथवा दूसरा अर्थ में इसमें परमात्मा लेना। सवित्रा देवता द्वारा यानी बात, जब हम उनको अनुज्ञा देते हैं ना, प्रार्थना करते हो, पहले मंत्र में आया, तो सवित्रा देवता से अनुज्ञात हो करके हमको क्या करना चाहिए? ब्रह्म पूर्वम, पूर्वियम ब्रह्म सेव जुषेत सेवित। सनातन जो ब्रह्म है, चिरंतन जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सेवन करना चाहिए, सेवा करे। तत्र जोने किरणवसे है, तत्र तत्र उस ब्रह्म में निष्ठा, जोने माने निष्ठा, जोने माने समाधि। हाँ, तो वहां निष्ठा करनी चाहिए। अब वहां निष्ठा नहीं करे तो क्या होगा? ये विचार हुआ, पूछे आपने कहा तत्र योनि किरणवसि। हाँ, वहां जाने कुरुस्व, ये समझना, किरणवसि माने कुरुस्व, ये विधि व्याख्या है। वहां क्या करना चाहिए? निष्ठा करना चाहिए। कहाँ? सनातन ब्रह्म में, जिस ब्रह्म को सेवन करने के लिए बोला है ना, उस ब्रह्म में निष्ठा करना चाहिए। अगर निष्ठा ना करने से तो क्या होगा? तो आगे बोलते हैं, नहीं ते पूर्तम अक्षिपत। पूर्तम अक्षिपत नहीं ते, यदि नहीं करोगे तो पूर्त कर्म तुमको विक्षिप्त करेगा, संसार के भोग में लगाएगा। मतलब कि आप ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार के कर्म बताया था, ख्याल है कि नहीं? एक पूर्त कर्म और इष्ट कर्म। यह पूर्त शब्द से इष्ट का समझ लेना, उपलक्षण समझ लेना। इष्ट विचार स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, यानी बात स्रोत कर्म कहो, स्मार्त कर्म कहो, इष्ट कर्म कहो, पूर्त कर्म कहो। इष्टा पूर्ता मन्यमाना वरिष्ठम, वो उपनिषद में ना, मंडक उपनिषद में भी आया। हाँ, इष्टा पूर्ता मन्यमाना वरिष्ठम, केवल इष्ट और कर्म को मानते हो तो तुम्हारा संसार से छुटकारा नहीं मिलने वाले। हाँ, इष्टा पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, कुछ लोग इष्टा पूर्ता को मानते हैं, कौन? कर्मकांडी लोग, पूर्वमीमांसक। बस कर्म ही सब कुछ है, कर्म के पीछे कोई है नहीं। ब्रह्म ईश्वर को नहीं मानते हैं ना, ईश्वर को। हाँ, तो पूर्तम अक्षिपत, पूर्त कर्म, पूर्व कर्म क्या करेगा, तुमको विक्षिप्त बनाएगा, अर्थात कर्म संसार में लगाएगा। पूर्व कर्म क्या समझते है ना, पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाए, अभाव के पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाए, या तालाब बनाओ, बगीचा बनाओ, अन्य नाना नानी के पार्क बनाओ, मंदिर बनाओ, तालाब खोदो, सड़क बनाओ, अन्न क्षेत्र खोलो, गौशाला खोलो, ये सब जो कर्म होते हैं ना सामाजिक, हाँ, उसका नाम पूर्त कर्म। हाँ, इष्ट कर्म स्वर्ग कामो जजीता तो तुमको स्वर्ग जाना है तो जजन करो, ये विधि व्याख्या है। किम जजेत स्वर्ग कामो जजेत, किम जजेत अश्वमेधी न जजेत, अश्वम यज्ञ करो, अश्वम यज्ञ करो, सोम यज्ञ करो, भात पे यज्ञ करो, है इष्ट कर्म। कूर्त कर्म वो इष्ट कर्म राजा राजस्व ये न जजेत, अश्वमेधी न जजेत। राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कौन सा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आनी पा राजस्वीय यज्ञ, सोम यज्ञ न श्याम यज्ञ नहीं, श्याम यज्ञ शत्रु मारने के लिए किया जाता है। हाँ, जो शत्रु होते हैं ना, शत्रु को मारने के लिए श्याम यज्ञ करो। ब्राह्मणा बृहस्पति सभी न जजेत, ब्राह्मणों को बृहस्पति जाग करना चाहिए, राजा को राजा से जाग करना चाहिए, अश्वम यज्ञ करना चाहिए, हाँ सोम यज्ञ करना चाहिए, ऐसे अलग अलग है। तो राजा लोग करते बड़े बड़े यज्ञ, जैसे राम ने अश्व छोड़ा था कि नहीं, अश्व यज्ञ किया, फिर इसी प्रकार पांडवों ने छोड़ा था कि नहीं। हाँ, पहले पहले राजा लोग अश्व को छोड़ते थे, अश्व घूम करके आते तब यज्ञ करते थे, इससे पहले नहीं करते। इसी प्रकार राजा सगर जो है ना, राजा सगर ने छोड़ा था कि नहीं अश्व, जिसके पीछे 60,000 टिड्डी दल चला था, राजा सगर के 60,000 संतान थे वो। अभी कहते दो संतान, हम दो हमारे दो, ये क्या करेगा ये, काल दोनों मर गया तो रोना पड़ेगा कि नहीं रोना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे यहाँ अभी भी 16-16, 17-17 पुत्र को पालन पोषण करता है, तू एक के डर जाती है। हमारे यहाँ अभी दर्जन पुत्र पैदा करने वाला गांव में जाकर देखो जमींदारों को, तो जमींदार वगैरह तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तो तुम नहीं कर सकते, तुम मत करो, जो करता है उसको करने दो ना। मैं तो कहता जिसको करना है करने दो ना, तुम क्यों रोकोगे, जिसको समर्थ है करेगा, किरण नहीं। अब 8-8, 10-10 संतान तो अभी भी है, तो फिर वो नौकराई बात दूसरी है, नौकरी कौन देगा। अभी नौकरशाही में प्रवेश कर गया, पहले नौकरी नहीं करते थे, समझे क्या नहीं। आपने जमीन अभी क्यों बेच दिया सब, क्यों आ गए, खेती बाड़ी क्यों छोड़ दिया, आपने कमजोरी नहीं देखते हो तो दूसरा को कमजोरी आपने में आरोपित करते। सामर्थ्य होना चाहिए ना। अभी मुसलमान चला सकता है 10-10, 12-12, 5-5 बीवी, 100-100 बीवी, अब हिंदू क्यों नहीं करता है, हिंदू क्यों नहीं चला सकता, मुसलमान कैसे चलाता है अभी भी, उसका कोई 8-10 ना संतान होता है एक एक परिवार का। हमारे हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब हुआ 5 करोड़ मुसलमान थे, अभी 25 करोड़ कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या चार बीवी हो, पचास बीवी होते ना। अभी भी अरब देश में एक एक मुसलमान का कोई जो है ना सर, वो सौदागर मुसलमान सौ सौ बीवियां रखते हैं। हाँ चलिए, तो कहने का मतलब समझे कि नहीं, कर्म जो है ना, कर्म बंधन का हेतु कौन सा? पूर्त कर्म। पूर्त कर्म क्या है? जो अभाव को पूर्ति करने के लिए, सामाजिक अभाव को पूर्ति करने के लिए जो किया जाता है, अन्न क्षेत्र खोलता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर बनाता है, सड़क बनाता है, कुआं बनाता है, प्याव बनाता है, ये सब बनाने वाला का कर्म का नाम पूर्त कर्म होता है। इष्ट माने बड़े बड़े यज्ञ है, राधा राधा सूर्य नजित अश्वमेधन जजित जजन करना चाहिए। आई बात तो क्यों आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? पुराणिक कर्म भी होते हैं ना, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, फलाना यज्ञ, ये भी तो यज्ञ है ना, ये भी कर्म करते हो। उसमें पीछे कामना क्या है आपकी? आप क्यों कर रहे हैं यज्ञ? आप क्यों कर यज्ञ कर रहे हैं? कोई ना कोई लक्ष्य होगा ना। हाँ, बिना लक्ष्य से कोई कर्म होता नहीं। बात लक्ष्य के बिना, हाँ आजो कर्म करते क्या शास्त्र में लिखता है ना, फलम अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। फल के उद्देश्य दिए बिना मंद बुद्धि वाला मनुष्य भी किसी कर्म के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। आप यहाँ जा रहे हैं, रास्ते में किसी बोला कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं कहीं नहीं, तो जाता रहे हो कहीं नहीं गया, नहीं इसे थोड़ा काम है, तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। क्यों मंदिर जाना है? दर्शन करने के लिए जाना है। तो लक्ष्य बतलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना लक्ष्य से कुछ होता नहीं। तो यहाँ कहते हैं जो दोनों कर्म है, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दृग का दर्शन, दृग कहते ज्ञान को, दर्शन कहते दृश्य को। आनी बात, ये दोनों की जो एकात्मता होती है उसको अस्मिता कहते हैं। जब तक अस्मिता नहीं होती है ना, तो कर्म नहीं होता है। याद रखना, अहम भाव पहले अपने में आरोपित करना पड़ता है। अहम करोमी, मैं करता हूं, ये आप हमने कहा तो आपने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कई प्रश्न एक साथ आता है तो बतलाना पड़ता है। किं करोमि, कथम करोमि, कस्मात करोमि, किम उद्देश्य करोमि, ये सब बातें आती है। आनी बात, ये सब बातें आती है। तो इसीलिए अस्मिता के बिना, अहम के आरोप के बिना कोई कर्म कोई करता नहीं। क्यों? जागृत अवस्था में रहता है अस्मिता, स्वप्न अवस्था में भी रहती है अस्मिता। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अस्मिता है, जागृत में स्थूल अस्मिता है, और सुसुप्ति में अस्मिता नहीं रहती है। हाँ, हाँ उस समय निर्लीन हो जाता है। उस अवस्था में तुम रहती हो कि नहीं रहती हो? हाँ रहते। तो उस अवस्था में तुम कोई कर्म करते हो, मैं इस कर्म का करता हूँ, ऐसे कर्मणा करता हूँ अस्मि, वैसे कर्मणा फलम में स्यात, तो नहीं है। तो इसीलिए जब दृग दृश्य दोनों एक हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था में दृश्य अलग हो जाता है और दृष्टा अलग हो जाता है, इसीलिए उस समय अहम भाव नहीं रहता है। तो इसमें तो उस समय कोई भी कर्म, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे सांकल्पिक कर्म हो, आनी बात कोई कर्म नहीं होता है। तो देखो इसी के भाष्य चला था, कहां से? नहीं आगे पहले श्लोक देखो, हाँ सभी जैसे ज्ञान अग्नि ना। हाँ इसी का चला नहीं ते पूर्त स्मार्त, देखो यहां से नहीं ते पूर्त स्मार्त, पूर्त माने स्मार्त कर्म इष्टम श्रोत्रम स इष्ट कर्म श्रोत कर्म। हाँ ये आक्षेपण न पुनर्भोग हेतु बदनाती, पुनर्भोग के लिए तुमको संसार में बंधेगा नहीं, आज नहीं तो तुमको बंधेगा। क्यों? अहम भाव जब करोगे कोई भी कर्म के प्रति तो बंधन का हेतु होगा। कर्म में कर्तृत्व का अभिमान किए बिना कर्म नहीं होता, याद रखना। संकल्प करते हो कि नहीं, संध्या वंदना करते हो कि नहीं, संध्या वंदना में भी संकल्प होता है ना, अहम ऐसा करूंगा। ओ आद्य एतस्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धेषु श्वेतवराह कल्पे, ब्रह्मण द्वितीय श्वेतवराह कल्पे भविष्यत् मन्नंतरे अष्टविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्त एक देशांतरगते प्रातः संध्या वंदनम करिष्ये अथवा अमुक स्मार्त कर्मम करिष्ये, मैं करता हूं ये संकल्प करते हो तो अहम के आरोप के बिना संकल्प होता नहीं, कोई कर्म नहीं होता। यानी वैसा श्रोत कर्म हो या स्मार्त कर्म हो, कर्तृत्व का आरोप करना पड़ेगा। यानी बात तो कर्तृत्व का जहां आरोप करोगे कर्म में तो कर्म बंधन का हेतु होगा। बिना संकल्प पे कर्म होता केवल निष्काम कर्म, यानी बात संकल्प नहीं किया जाए, कर्तृत्व अभिमान नहीं किया जाए। हाँ तो जैसे श्री कृष्णाय परमात्मा ने आये रे काल पाठ किया कि नहीं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गाय नमो नमः। परंतु यहां भी संकल्प है, हाँ नमस्कार क्लेश को नाश करो। क्यों कर, क्यों नमस्कार कर रहे हो? हमारा क्लेश को नाश कर दीजिए। तो भगवान को क्लेश नाश के कर्ता बनाया कि नहीं बनाया? हाँ तो क्लेश नाश करने के लिए बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो फिर हो गया और क्या। जब भगवान को बुलाया हम आपको नमस्कार करते हैं तो नमस्कार के बदले में क्या चाहते हो? हमारा दुखों का नाश करो, क्लेश का नाश करो। तो भगवान को क्या बनाया? भगवान को तो बनाया हमारा काम कर दो। देखो तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता जो होते ना कर्म करता है, यानी उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं करता। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल देना न देना मालिक क्या मर्जी है। हाँ तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल का उद्देश्य हमारा नहीं है। कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, यानी बात फल मिले सा ना मिले, फल के उद्देश्य से हम कर्म नहीं करते, यानी बात। जैसे गीता में बतलाया ना 18वां अध्याय में सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, तीन प्रकार के है। सात्विक कर्ता को मांगता नहीं, राजसिक कर्ता कहते हैं राजगुण प्रधान जो कर्ता होते हैं वो कहते हैं फल हमको फल चाहिए। क्या फल लिए बिना हम कर्म करेंगे नहीं, फल छोड़ेंगे नहीं, कर्म करेंगे फल छोड़ेंगे नहीं, फल तो चाहिए, फल देना पड़ेगा। तुम हमारा क्लेश नाश करना तुमको पड़ेगा, हमारा दुख नाश करना पड़ेगा, हमारा हमको एक बेटा देना पड़ेगा। हम तुम्हारे जप करते इतना दिन से पुत्र से यज्ञ करते 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 पुत्रम दे पुत्रम दे पुत्रम दे करते करते मुंह सूख गया है, हमको पुत्र देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? हमारा अमुक रोग विनाश करना पड़ेगा, हमारी अमुक बीमारी को दूर करना पड़ेगा। महाराज करते करते इतना दिन हो गया, पहले रोग में कोई बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब करते करते अंगुली में कड़ा पड़ गया परंतु कोस हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? तो राजसिक जप करने वाला भक्त, राजसिक कर्म करने वाला कर्ता, ये जो फल बिना फल चाहिए उनको, फल लेना पड़ेगा। तामसिक कर्ता कहते पहले फल मिलेगा तब कर्म करूंगा, पहले दो मेरे को, देखूंगा तुम है कि नहीं, तुम कितना दे सकते हो। फल दो फिर भजन करेंगे, फल दो पहले, करते हो कि नहीं करते हो? तो ये तामसिक करता है, फल लिए बिना तुम्हारा सेवा हम नहीं करेंगे, हमारे घर में इतना हजार रुपया भेज दो, हमारा घर बनाएगा, हम तुम्हारे यहाँ कर्म करेंगे। तो कहने का मतलब संसार में कर्म करते हैं, कर्म करने का सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य, सबका तरीका अलग अलग है, एक सा नहीं होते। अगली बात, ऐसे पूर्त कर्म करते हैं, एक आदमी करते रहे, हाँ धर्मशाला बनाया, ईंट लगाया, पत्थर लगा, ऐसे लगे ना पत्थर लगाते कि नहीं, हरिद्वार में जाओ आश्रम में कितने पत्थर लगाया, जितना हर रूम में पत्थर है, हर रूम में पत्थर है। आने बात, कोई एक जो है ना सज्जन जो है ना खूब रूम बनाया, पत्थर बनाया, ईंट लगाया, मंदिर बनाया, सब कुछ किया, हाँ तो महात्मा के आदेश से बनाया, तो सज्जन मर गया, तो सज्जन मरने के बाद में महात्मा भी मर गया थोड़ा दिन बाद में, क्यों? सबका भेष अलग अलग है, समझना, सबका जन्म का भी भेष अलग अलग है और मरने का भी भेष अलग अलग है, एक भेष आया दूसरा भेष गया, एक भेष गया दूसरा भेष आया। कहते ना हमारे घर में बाबा आया, बेबी आई, फलाना आया, तुम्हारे जाने की तैयारी करना पड़ेगा, जगह खाली कौन करेगा? तुम जाओगे तब ना जगह खाली होगा उसके रहने का है? तो महात्मा कालांतर में महात्मा भी मिल गया, मर गया, तो महात्मा को ले गया स्वर्ग की तरफ है? तो महात्मा ने कहा मैं जाऊंगा, पहले हमारा एक जजमान मरा है, बड़ा दाता था, बड़ा पुण्यात्मा था, बड़ा फलाना था, बहुत बावड़ी बनाया, फलाना बनाया, ईंट लगाया, पत्थर लगाया, धर्मशाला बनाया, उसको मेरा देख कर लो चलो स्वर्ग में। बोले नाम क्या है उसका? बोला फलाना। प्लीज नाम का तो यहाँ स्वर्ग में कोई आया नहीं, क्या कहते हो? इतना दान करने वाला यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? देंगे पता नहीं, जाओ नरक में देखो। तो नरक में गया देखने के लिए, तो वहां देखता पूछता है ये अमुक व्यक्ति आया? बोले हाँ आया तो है। कहाँ है? नरक के अमुक नाम के नरक में जाए। वो कैसे आया यहाँ? इतना दान करने वाला ही आया, इतना परोपकार करने वाला ही आया। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, धर्मराज से पूछा, चित्रगुप्त से पूछा, बोले सब कुछ किया है, बोले उसने हर एक ईंट के साथ अहम को जोड़ रखा है, हर एक ईंट जो है ना, ये ईंट लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, ईंट लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, इसीलिए उसको जो है ना वो दान किसी काम का। इसीलिए जहां भी सत्कर्म होते हैं, सत्क्रिया होती है, अहम भाव को जोड़ो नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। तो पूर्त कर्म में हमेशा अहम भाव जोड़ा रहता है, इष्ट कर्म में तो है, पर इष्ट कर्म करने वाला जो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग कामो जजे, तो वो तो स्वर्ग जाने है तो जजन करेगा, स्वर्ग जाने का है वो जानता है, स्वर्ग जाने वाला समझ गए नहीं? स्वर्ग जाने वाला जो होते हैं ना, इस मर्तबे में इस शरीर में इसकी आसक्ति नहीं होती है। तो स्वर्ग जाने के लिए कर्म करते हैं ना, इसकी आसक्ति नहीं होती। वो जानता मरने के बाद ही हमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा, है नहीं बात? इसलिए देहात्मा भाव उसको नहीं रहता है, उसको रहता है जीवात्मा भाव। मैं जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, स्वर्ग नरक आदि में आने जाने वाला जीवात्मा है। तो स्वर्ग में जाने के लिए जो कर्म करेगा वो देह में अहम भाव जोड़ेगा नहीं। तो देह में अहम भाव जोड़ करके कर्म करेगा नहीं, तो किस में करेगा अहम भाव? जीव भाव में। जीव भाव में क्यों? जीव ही जाएगा स्वर्ग में, नरक में, स्वर्ग में कौन जाता है? जाता तो है, फिर वो देहात्मा भाव वाला कहाँ जाएगा? देह में तो आत्मा भाव किया, उसको तो मुक्ति हुई ना। देव हम, देव हम, देव हम, देव हम। पूर्त कर्म ज्यादा करेगा। देव हम, देव हम, मैं कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं का। इसीलिए गीता के 16वां अध्याय में शायद भगवान या भगवान ने कहा, देखो आसुरी संपत् इदम अद्य मया लब्धम, इदम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदमे भविष्य पुनर्धनम, असो मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरा नभीश्वर महम भोगी हिद्वम बलवान सुखी अध्य वसन अध्य अभिजनवानोस्मी कोई नस्त सदृश मया। यह अहंकार है, जक्षे दश्यामि मदिष्ये सब मैं कर रहा हूं। इत्यज्ञान अभिमहिता एताम दृश्य मनुष्य नष्ट आत्मन अल्प बुद्ध है। ये दृष्टि को लेकर के नष्ट हो गया, समझ गए नहीं? ऐसा चलिए नहीं ते पूर्त स्मार्त कर्म इष्ट श्रोत्रम स कर्म अक्षिफन न पुनर्भोग हेतुर्बध्नाति। उसको नहीं बांधता है कौन? किसको नहीं बांधता है? पूर्व्याम ब्रह्म निष्ठाम, ब्रह्म में जो निष्ठा है उसको नहीं बांधेगा, याद रखना। तत्र जोनेम कृणवा से, तत्र उस ब्रह्म में जिसने निष्ठा किया है, समाधि लगाया, ध्यान लगाया, उसको ये बांधने का नहीं। पुनर्भोग हेतुर्बध्नाति ज्ञान अग्नि न सविशेष्य दग्धत्वात्। क्यों नहीं बांधेगा? क्या हेतु दे रहा है? याद रखना, कारण क्या है? कहते ज्ञानाग्नि न, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि जो है ना, इसके सब कर्म को, अभी यहाँ सब कर्म से इष्ट कर्म, अश्रोत कर्म, स्मार्त कर्म, पूर्त कर्म, इष्ट कर्म दोनों समझना। यूं नहीं समझना कि एक कर्म को जला दिया, पूर्त कर्म को जला दिया, इष्ट कर्म रह गया, ऐसा नहीं समझना। पूरा इनका अग्नि का काम जलाना है। जैसे हवी अग्नि में, अग्नि जलाते कि ना, हवी डालने के लिए, तो तुमने अग्नि जलाया, तो अग्नि में तुम उसे कच्चा लकड़ी डालो, पक्का लकड़ी डालो, आहुति डालो, अज्ञ डालो, कुछ भी डालो, अग्नि का काम है दग्ध करना, स्वाहा करना। अग्नि स्वाहा कर डालते हो तो डाला, तो अग्नि का काम जलाना। ये नहीं कच्चा है, ये नहीं पक्का है, ये नहीं देखेगा। ठीक इसी प्रकार कहते हैं ज्ञान रूपी जो अग्नि है, तो ज्ञान रूपी अग्नि क्या करेगा? सर्वकर्माणि, ऐसा नहीं समझना। सर्वकर्माणि इसका मतलब होता है तुम्हारा संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, सब कर्म को नाश करेगा। ये नहीं कि अभी प्रारब्ध कर्म तो भोग से नाश हो जाएगा। तो तुम सोचते होंगे कि प्रारब्ध कर्म तो भोग से नाश होगा तो हमारी मुक्ति हो जानी चाहिए ना, कर्म नाश हो जाएगा। हमने भोग के समाप्त कर यह कर्म, फिर मुक्ति हो जानी चाहिए ना। कि तुम्हारे इस कर्म का नहीं, अनंत जन्मों का संचित कर्म पड़ा हुआ है। एक जन्म का नहीं, याद रखना, अनंत जन्मों का। क्यों? जब से सृष्टि कब से है, अभी अभी वो उसमें आते हैं ना, 5 करोड़ 10 करोड़ पहले का जीविका चिन्ह मिलता है अभी हिस्टोरिकल चैनल में। कब भाई 10 करोड़ पहले का ये चिन्ह यह है, तो इन लोगों का तो खोज कर रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग तो कहे 5000 बरस हुआ महाभारत हुआ, परंतु तो द्वापर हुआ कि नहीं हुआ, द्वापर फिर त्रेता गया कि नहीं, सत्य गया कि नहीं, फिर युग का पुनरावृत्ति हुआ कि नहीं हुआ। तो जब होगा तो वैज्ञानिक लोग जो खोज कर रहा है इन लोगों को सब पता चल जाता है। अवशेष देख करके ये 5 करोड़ वर्ष पहले का प्राणी है, 10 करोड़ वर्ष पहले का पानी। हम तो 5000 की बात नहीं करते, वैज्ञानिक लोग तो खोजते हैं ना। देख लेना कभी कभी आप वो चैनल हिस्टोरिकल, और एक है दूसरा है डिस्कवरी, डिस्कवरी हाँ देख लेना। इससे बहुत ज्ञान बढ़ता है हमारे सृष्टि के क्रम में, सृष्टि के लिए बहुत कम बढ़ता है। अब उस समय वो महाभारत के समय क्या जो है ना, वो भगत या पांडव लोग जो है ना, वो गया था ना समय चक्र के समय में दिग्विजय करने के लिए, तो मणिपुर गया था। मणिपुर में मणिपुर राजा के कन्या के साथ अर्जुन की शादी हुई थी ना, पूर्व से हाँ, वहां जो कन्या जो है ना उसके प्रेम करते थे ना अर्जुन से, तो शादी किया। वो मणिपुर के राजा के उसमें ये संग्रहालय में कहते वो बब्रू वाहन का तलवार आई हुई है, इतना लंबा थोड़ा करे, 4-5 हाथ लंबा था थोड़ा, और उसका शरीर कितना रहा। सत्य युग के आदमी 21 हाथ लंबा होते थे, त्रेता युग के 14 हाथ हो गया, द्वापर में 7 हाथ हो गया, कलि युग में 3.5 हाथ हो गया। धीरे धीरे आगे और भी कम हो जाएगा, 1 बीटा तक आएगा। देखते ना 52 अवतार तो ठीक है, 52 अवतार भी हमसे बड़ा था, 52 अवतार भी आपसे और हमारे जैसे थे गया। क्या भे उसके हाथ के हिसाब से है ना 52 अवतार, आपके हाथ से आप 3.5 हाथ किए है, हमारे हाथ से हम 3.5 हाथ किए है, उनके हाथ से 3.5 हाथ किए। आप एक पंजाबी है, काबुली है, अफगानिस्तानी है, मुसलमान है, इतना लंबा चौड़ा है, उनको तुम 3.5 हाथ से मारो है, तुम्हारे हाथ तो भोड़ेगा भूसा। उनके हाथ से वो 3.5 हाथ है अपने हाथ से है, हमारे हाथ से देखेगा तो उठा कर। एक बार मैं जलंधर में रहा, स्टेशन में खड़ा रहा, गाड़ी पकड़ने के लिए आया, अभी वो 2-4 भैया जो है ना गाड़ी में चढ़ गया, उसमें एक आया पंजाबी जाट, ऐसे उठा करके फेंक दिया ऐसे फुटबॉल के जैसे। मैंने कहा देखा इसके सामने क्या, दरवाजा खाली कर दिया उसने, सबको फेंक करके। मुझे दृश्य अभी तक याद है, समझे कि नहीं। वो जाट आदमी इतना तगड़ा होते हैं वहां के पंजाबी जाट, सीख देखे ना सीख रहा था सरदार कितने सारे, उसका तुम 3.5 हाथ से माफ हो गए। 52 अवतार है आप लोग सब। हाँ चलिए, हाँ चलो, आज तो देर से चालू किया है। ज्ञान अग्नि सविजेश दग्धत्वा, सविज मानी बीज के साथ, बीज का कर्म का बीज क्या है, कर्म बीज वासना, समझ के नहीं, कर्म बीज वासना, वासना के साथ, अविद्या के साथ, अज्ञान के साथ, हाँ सब कर्म को धारा करके भस्म कर देता उक्तम स, उक्तम स काल करना।